नमस्ते बच्चों, मेरा नाम मानस है और आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर इंग्लिश का लेके आया हूँ, क्लास नाइन्थ का। बुक का नाम है बी हाइव और चैप्टर का नाम है चैप्टर फाइव, द स्नेक एंड द मिरर। तो जैसा कि हम अभी आगे चल के देखेंगे, ये जो चैप्टर है इसमें एक इसका जो सेंट्रल थीम है कि वो एक स्टोरी है एक बंदे की जो कि थोड़ा दिमाग से कम है, थोड़ा बेवकूफ टाइप का है और अपने आप पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है। कई बार हमने देखा है कि हम जब शीशे के सामने मिरर के सामने जाते हैं तो हमारे जो है, और हम बहुत गुड लुकिंग हैं तो हम उसको देख के हमारे थॉट्स इधर उधर भागने लगते हैं और वो थॉट्स काफी स्टूपिड और काफी मूर्खतापूर्ण होते हैं और मतलब हम अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचने लगते हैं, हमारे अंदर अहम आ जाता है और मतलब हमारा सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जो सारा चीज का मतलब जो सोर्स है, सेंटर है, वो हम अपना खुद को समझने लगते हैं। इतना ज्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छे हैं। तो इसी को एक बहुत ही मजेदार ढंग से इस स्टोरी ने आपके सामने लाने की कोशिश की है। और ये स्टोरी एक डॉक्टर साहब हैं उनकी है और उनके स्टूडेंट्स को वो बता रहे हैं अपना एक इंसिडेंट बचपन का नहीं, बहुत जब यंग थे वो डॉक्टर, तब की बात वो स्टोरी अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं लेक्चर हॉल में और कितने फनी तरीके से बता रहे हैं। और उसी स्टोरी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए कि हाँ, जब भी मतलब हमें अपना बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। कभी कभी होता है जब हम यंग होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो मतलब हमें बहुत थोड़ा सा भी अच्छे दिखने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं दुनिया में और दूसरों को हम कुछ नहीं समझते। तो उस चीज से बचने के लिए एक तरह का ये संदेश है इस स्टोरी में और मैं आपको सामने ये स्टोरी पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट्स हो आपके तो हो सकता है उससे क्लियर हो जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ये नया चैप्टर, इसका नाम है द स्नेक इन द मिरर। बिफोर यू रीड, आप अपनी किताब खोले रखें, मेरे साथ ही पढ़ें और उससे आपको आसानी होगी समझने में। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird look into a mirror? What do you think it sees? तो ये कह रहे हैं कि आपने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? क्या आपको क्या समझ में आता है कि क्या thoughts आते हैं या क्या सोच आपकी रहती है ऐसे टाइम पे जब आप अपने आपको देख रहे होते हैं मिरर में? और कभी आपने देखा कि कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई चिड़िया अपने आपको ऐसे मिरर में देख रहा है? और अगर कभी देख भी रहा है तो आपको क्या लगता है वो क्या सोच रहा है? Now read this humorous story about a doctor, a snake, and a mirror. आइए देखते हैं क्या स्टोरी में है। Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. तो एक डॉक्टर सवाल पूछ रहा है कि किसी भी स्टूडेंट के किसी बॉडी पार्ट के चारों तरफ अपने आप को ऐसे कॉइल किया हुआ है, लपेटा हुआ है, और वो ऐसा था सांप नहीं, पूरा जो नाग होता है कोबरा, सब चुप हो गए। क्वेश्चन जो था वो एक होम्योपैथ का था, मतलब होम्योपैथी जो मेडिसिन का एक ब्रांच होता है, एक तरीका होता है, ज्यादा ब्रांच नहीं होता, मेडिसिन का एक अलग पद्धति है होम्योपैथ, वो थे ये और ये स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और सवाल पूछ रहे थे। सारे लोग जो है एकदम चुपचाप उनकी बात सुनने लगे जैसे जैसे वो कहानी आगे बढ़ी। It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. अब ये स्टोरी शुरू हो गई है, डॉक्टर साहब सुना रहे हैं कि वो एक गर्म गर्मियों की रात थी, 10 बजा था करीब रात में, और मैं बाहर रेस्टोरेंट में बाहर जाके खाना खा के अपने घर में वापस आया था अपने कमरे में। और ऐसे ही मैं अंदर घुसा तो ऊपर से एक छोटी सी आवाज आई जो कि आती रहती थी, मुझे पता थी किस चीज की आवाज है। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा था कि वो रूम में मैं और रैट्स जो थे वो दोनों शेयर, मतलब चूहों के साथ वो शेयर करते थे रूम, मतलब चूहे भी वहां रहते थे, ये भी वहां रहते थे, मतलब ये फनी एक टेक है उस पर। और इन्होंने अपना कुछ वही माचिस वाचिस निकाली और केरोसिन लैम्प जला लिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। आई हैड जस्ट सेट अप अ मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज। I also possessed a solitary black coat, which I was then wearing. तो ये अपने बारे में बता रहे हैं, हम कमरे के बारे में बता रहे हैं कि उसमें बिजली नहीं थी उस घर में, छोटा सा किराए का घर रूम था, और मैंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस, यंग थे बहुत, सेटअप की थी तो बहुत कम पैसे कमा रहा था मैं, और मेरे पास करीब 60 रुपीज थे सूट केस में, अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोती, मतलब कोई शर्ट थी और थोड़ी बहुत धोती थी. ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, मतलब एक छोटा सा इनके पास कोट भी था जो ये पहने हुए थे, बस एक ही कोट था इनके पास. अच्छा, ये स्टोरी आपको बता दें, ये स्टोरी इंडिया की ही है, तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि इंग्लैंड की स्टोरी है तो ऐसा नहीं है, इसमें सब इंडियन कैरेक्टर हैं, तभी शर्ट्स और धोतीज की बात हो रही है, तो होम्योपैथ और डॉक्टर सारे इंडिया की ही स्टोरी है. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. आई ओपन्ड द टू विंडोज इन द रूम. इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. तो अब इस पैराग्राफ में जनरली अपने कमरे को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसका आर्किटेक्चर क्या था, क्या क्या था, क्या नहीं था, और इन्होंने क्या किया कि आए अपने कपड़े उपड़े, मतलब इन्होंने उतारे, शर्ट उतारी, कोट उतारा, और जो अंदर बनियान पहनी थी वो उसे उतार दिया, लेकिन वो थोड़ी गंदी हो रखी थी, ये क्या बता रहे हैं, नॉट सो वाइट. आई ओपन्ड द टू विंडोज इन माई रूम, तो कमरे की खिड़कियां खोल दी इन्होंने और मतलब बाहर निकल गए यार्ड की तरफ जो देखती थी. रूफ जो थी उसमें टाइल्स लगी हुई थी जो ऊपर की खपरेल थी, और सपोर्टिंग बीम्स होती थी पुराने घरों में लकड़ी की, वो थी वहां पे, और कोई ऐसी सीलिंग टाइप की चीज नहीं थी वहां पे, और रैट्स जो चूहे थे वो बीम्स पे चलते रहते थे पूरे टाइम, मतलब वो उन्होंने पहले भी बताया था. तो इन्होंने अपना बिस्तर ठीक किया और चेयर जो है उसे दीवार के किनारे लगाई, सोने की कोशिश की पर सो नहीं पाए, तो ये क्या किया उन्होंने, उठे और चले गए वरांडा में, थोड़ा बाहर चले गए हवा लेने थोड़ी, लेकिन हवा ही नहीं चल रही थी, तो विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ का मतलब है कि जो भगवान थे हवा चलाने वाले, उन्होंने थोड़ी छुट्टी ले रखी थी उस समय. आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर. आई ओपन्ड द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक द मटीरिया मेडिका. तो ये वापस गए अपने कमरे में और चेयर पे बैठ गए. बैठने के बाद इन्होंने एक डब्बा खोला और उसमें से किताब निकाली. किताब थी मटीरिया मेडिका, मेडिकल की किताब थी. आई ओपन्ड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर. अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड्स द मिरर. तो अब ये किताब जैसी खोली इन्होंने तो देखा कि वहां पे एक लैम्प रखा हुआ है उस टेबल पे, और एक बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ है उस टेबल के सामने, और एक छोटी सी कंघी रखी है वही शीशे के बगल में. वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक एट द मिरर, लुक इन टू अ मिरर when it is near one. I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. तो जब ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब देखता है कोई आदमी शीशे में ना, तो मतलब एक जब शीशा आदमी देखता है तो उसको टेम्प्ट होता है कि और अच्छे से देख लें अपने आप को, देखें कैसे लग रहे हैं. और उस दिन में, उन दिनों में डॉक्टर साहब जो थे कह रहे हैं कि मैं बहुत ही, मुझे बहुत सुंदरता बहुत पसंद थी और अपने आप को मैं बहुत हैंडसम रखने की कोशिश करता था, क्योंकि आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट. अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. तो कहते हैं कि आई वॉज अनमैरिड एंड डॉक्टर, तो अपने आप को बड़ा, मतलब वो कह रहे हैं मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं एक डॉक्टर था, और मुझे लग रहा था कि मुझे अच्छा दिखना है, प्रेजेंटेबल दिखना है, सब लोग देखें मुझे, यू नो, तो इसलिए इन्होंने जो है वो कंघी उठाई और एकदम अच्छे से अपने बाल को कंघी किए, और पार्टिंग मतलब जहां से बाल जिसे मांग कहते हैं उसे निकाली बड़ी क्लीन और स्ट्रेट एकदम, ताकि मतलब अच्छे लगें. फिर इन्हें सुना, आवाज आई ऊपर से जो हमेशा आ रही थी, चूहों की जो आवाजें थी. आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैश टू लुक मोर हैंडसम. I was after all a bachelor and a doctor. तो फिर वही अपनी उसमें चले गए कि मैं तो बैचलर हूं, मैं डॉक्टर हूं. तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन उस समय लिया, जो कि कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां लिखा है ताकि मतलब एक फनी तरीके से अपने आप को सार्कैज़म में बता रहे हैं। तो इनका इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था, इन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि आज से मैं रोज शेव करूंगा और एक पतली सी मूछ रखूंगा ताकि मैं और हैंडसम लगूं, क्योंकि मैं बैचलर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये उनको बार बार रिपीट हो रहा है वो थॉट। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, आई वुड ऑलवेज कीप दैट स्माइल, अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू टू टॉप इट ऑफ। तो फिर से उन्होंने वही काम किया, उन्होंने देखा मिरर पे फिर से और हंसा, हल्का सा स्माइल दी, मुस्कुराए, और मुस्कुरा के देखे तो उनको लगा कि वाह कितनी सुंदर मुस्कुराहट है मेरी, और जो है एकदम अर्थ शेकिंग डिसीजन इन्होंने लिया, मतलब और इम्पोर्टेंट डिसीजन इन्होंने लिया कि आज से ये हमेशा हंसते रहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी हंसी है इनकी, मुस्कुराहट है, तो और ज्यादा हैंडसम लगेंगे। और क्यों ना लगें, क्योंकि ये तो बैचलर, इनकी शादी नहीं हुई है और ये डॉक्टर भी हैं भैया, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण मतलब विचार इनके दिमाग में आ रहे थे, ये अपना खुद ही बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आवाज आई ऊपर से जो कि आ रही थी लगातार। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, आई वुड मैरी, I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. तब देखिए कितने मतलब ख्याली पुलाव किसे कहते हैं पकाना, कुछ भी दिमाग कहीं का कहीं जा रहा है और क्या क्या ये मतलब मूर्खतापूर्ण बातें सोच रहे हैं वहां पे, जिसका कोई काम नहीं था उस समय। इन्हें कोई काम कर सकते थे उस समय, लेकिन क्योंकि शीशे में देख रहे हैं तो इनको अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। तो ये उठे, इधर उधर चलने लगे, फिर एकदम से इन्हें कुछ एक लवली एक और ख्याल आ गया। इनका ख्याल क्या था कि मैं शादी करूंगा, और शादी में मैं किससे करूंगा, एक लेडी डॉक्टर से करूंगा जिसके पास खूब सारा पैसा होगा और अच्छी सी उसकी सेट मेडिकल प्रैक्टिस होगी, खूब पेशेंट आते होंगे उसके पास, और वो जो लेडी डॉक्टर होगी वो बहुत मोटी होनी चाहिए, मतलब दुबली नहीं होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। उसका एक वैलिड रीजन इन्होंने सोचा, क्या था वो रीजन, ये था कि भैया अगर मैंने कोई गलती की और मैं भागा जोर से, अगर मैं भागा तो वो मेरे साथ पीछे, मेरे पीछे दौड़ के मुझे पकड़ ना ले। तो इस तरह के इनके थॉट्स आ रहे थे दिमाग में। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। सडनली देयर केम अ डल thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely, nothing to worry about. ये इस तरह के जब इनके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे तो उसके ये थॉट्स के साथ ही अपनी चेयर पे वापस आके बैठ गए। अब कोई आवाज नहीं आ रही थी ऊपर से, धीरे से एकदम से कोई एक हल्की सी आवाज आई, डल सी धम्म से आवाज आई, धब सी, जैसे कि मतलब कोई रबर की ट्यूब जब गिरती है जमीन पे, जिस तरह की आवाज आती है उस तरह की एक आवाज आई। तो इन्होंने सोचा नहीं चलो कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। नो सूनर हैड आई टर्न्ड देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माय शोल्डर। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माय टर्निंग वर साइमल्टेनियस। तो जैसे ही इन्होंने, लेकिन क्योंकि आवाज आई थी, उन्होंने सोचा चलो पीछे मुड़ के देखते हैं क्या हुआ, क्या है, कहां से आवाज आई है। तो जैसे ही ये पीछे मुड़े तब इन्होंने रियलाइज किया कि एक मोटा सा सांप इनके जो चेयर थी उसके पीछे, मतलब चेयर का जो रेस्ट होता है उस पे से ऐसे रेंगता हुआ इनके कंधे पर चढ़ गया, और ये जैसे ही स्नेक इनके कंधे पर चढ़ा और जैसे ये पीछे मुड़े देखने के लिए एक साथ हुआ, ये साइमल्टेनियसली हुआ ये। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। द स्नेक slithered over my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. अब डॉक्टर साहब ना हिले, ना कूदे, ना चिल्लाया इन्होंने, इनको कुछ करने का समय ही नहीं मिला। जो सांप है वो धीरे से रेंगता हुआ इनके शोल्डर पे आया और इनके जो है बाएं हाथ के चारों तरफ लिपट गया, और जो उसका जो फन था, कोबरा था, नाक था, तो फन उसने ऐसे फैला लिया और उसका सर और इनके सर में बस 2 या 3 इंच का डिस्टेंस बचा था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मैली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माय ब्रेथ। आई वाज टर्न्ड टू स्टोन बट माय माइंड वाज वेरी एक्टिव। द डोर ओपन्ड इनटू डार्कनेस, द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस। इन द लाइट ऑफ द लैंप आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। तो अब केवल ये कहें कि डॉक्टर साहब डरे हुए थे, अपनी सांस रोके हुए थे, तो ये गलत है। ये केवल डरे हुए नहीं थे, सांस नहीं रोके हुए थे, ये कह रहे हैं कि मैं एकदम पत्थर बन गया था लिटरली डर के मारे। इनका दिमाग लेकिन चल रहा था, तो इन्होंने देखा कि जो दरवाजा है वो खुल रहा है अंधेरे में, और रूम जो है वो पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ है। और जो इन्होंने केरोसिन लैंप जलाया था, उस लैंप में इन्होंने देखा कि ये बैठे हुए हैं एक पत्थर की तरह। पत्थर की फोटो होती ना, बस ये था कि फ्लैश में पत्थर था। फ्लैश मतलब कि बॉडी तो इनकी थी ही, तो देख सकते थे अपनी बॉडी को, लेकिन वो एकदम पत्थर की तरह हो गए थे। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe, God, was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, Oh God. अब इन्होंने इतना डर लगा कि इन्हें भगवान की प्रेजेंस वहां पे महसूस होने लग गई। अभी तक तो सोच नहीं रहे थे, अभी तक अपने बारे में सोच रहे थे कितना अच्छा हूं, हैंडसम हूं, लेकिन जैसे ही डर लगा तब इन्हें भगवान की याद आई। अब इन्हें लगा कि भगवान ने उस कमरे में थे और वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। अब इन्हें लगा अगर मैं कुछ भी बोला और उन्हें अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा। और इन्होंने जो है एकदम इमेजिन कर लिया कि जैसे कि अपने दिल के बाहर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। वो लिखा क्या था? ओ गॉड, मतलब भगवान को याद कर रहे थे डर के मारे। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, no, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? तो इनके बाएं हाथ में हल्का हल्का दर्द भी होना शुरू हो गया। इनको ऐसा लगा कि कोई लेड का, तांबे का जो कोई रॉड है, फिर ये कहते नहीं नहीं तांबे का रॉड नहीं, कोई ऐसा रॉड जिसको मतलब आग से बना हुआ है, molten fire, गीली लिक्विड आग से बना हुआ है, उस तरह की जलन हो रही थी, दर्द हो रहा था इनको। और वो सांप क्योंकि लपेट रहा था तो इनको लग रहा था कि दबा भी रहा है। और इन्हें ऐसा लगा कि जो आम है उसकी पूरी जो स्ट्रेंथ है, उसकी शक्ति है, वो एकदम खत्म हो रही है। अब ये करें क्या, ये पूछ रहे हैं। What could I do? At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. अब ये सब चीजें रियलाइज कर रहे हैं कि अगर हल्का सा भी हिले तो सांप काट लेगा इन्हें, और एकदम मौत इनके सामने खड़ी थी 4 inch की डिस्टेंस पे। और अगर सोच रहे हैं, इनका दिमाग चल रहा है कि अगर सांप ने अटैक कर दिया तो ये क्या दवा खाएंगे, इनके पास तो कोई दवा भी नहीं थी। ये तो एक नए नए डॉक्टर बने थे और ये इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, और इनको अकल भी नहीं थी। अपने आप को फूलिश एंड स्टूपिड भी कहते हैं यहाँ पे, रियलाइजेशन हो गया, क्योंकि डर इतना लगता है ना आदमी को तो रियलाइज हो जाता है कि कितनी बेवकूफी भरी हरकतें हम कर रहे थे इसके पहले, और अब मौत सामने खड़ी है। तो इन्हें ये सब सोचते सोचते ये डर को भूल गए और हल्का हल्का स्माइल करने लगे अपने ऊपर। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? अब जो है चूंकि ये हल्का सा इन्होंने स्माइल किया अपने ऊपर सब रियलाइज करके, तो ये कहते हैं कि ऐसा लगा कि भगवान को ये चीज पसंद आई कि अपने आप को हम अंदर झांक के देख रहे हैं। जो सांप था उसने अपना सर मोड़ा और उसने भी हल्के से धीरे से शीशे में देखा और अपनी रिफ्लेक्शन को देखा। अब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इन्हें ऐसा तो ये नहीं कह रहे हैं कि पहला सांप था इसने मिरर में देखा, लेकिन ये पक्की बात थी कि सांप जो था वो अपने आप को देख रहा था मिरर में। अब इनके दिमाग में सवाल आने शुरू हुए कि क्या कर रहा है, देख क्यों रहा है, अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है जैसे मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, मतलब ये भी क्या उसी तरह के सवाल अपने दिमाग में रख रहा है कि क्या ये मूंछ बढ़ाएगा या अपनी आई शेडो लगाएगा या मेकअप करेगा या टीका लगाएगा अपने सर पे। मतलब इस तरह के सवाल डॉक्टर साहब के दिमाग में आ रहे हैं कि क्या सांप भी ऐसी कर रहा है जो मैं कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टन. What sex was the snake? Was it male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. तो अब इन्हें नहीं पता कुछ भी सांप के बारे में कि मेल था या फीमेल था, इन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। और सांप जो है उसने अपने आप को धीरे से लपेटा था तो वो ढीला हो गया और मतलब अपने आप को छुड़ाया इनके हाथ से और धीरे धीरे करके वो रेंगता हुआ इनके लैप में आ गया, मतलब इनकी गोद में आ गया वो कंधे से, और गोद से फिर धीरे से निकल के ये चला गया टेबल पे और उस शीशे की तरफ, वो शीशे से अट्रैक्ट हो गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. जैसे ही सांप इनकी गोद से उस पे गया टेबल पे, अपनी मिरर को देखना चाहता था शायद, जैसे ही डॉक्टर साहब की जान में जान आ गई। अब ये इमेज कट इन ग्रेनाइट जो थे, मतलब कि स्टोन की तरह जो फील हो रहे थे ये अभी तक, ग्रेनाइट स्टोन की तरह, मतलब अपने आप को कह रहे हैं इमेज कट इन ग्रेनाइट, मतलब कि ग्रेनाइट में कोई एक फोटो खींच दी गई हो इस तरह के वो बैठे हुए थे वहां पर पत्थर की तरह, एकदम से ये जो है आदमी बन गए, फ्लैश एंड ब्लड के, मतलब इनको अपना पूरा विश्वास हो गया अपने शरीर का और ये खड़े हो गए। अभी भी सांस रुकी थी, खड़े हुए अपने कुर्सी से, धीरे से बाहर निकले बरांडा से और वहां से जो भागे हैं डॉक्टर साहब, मतलब जो भी इनके पास स्ट्रेंथ थी वो लगा के वहां से भाग गए। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। अब हम वापस आ गए, ये जो क्लास में बच्चे जो सुन रहे हैं स्टोरी, ये उनकी बात है, ये वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हो फ्यू, मतलब होता है कि ऐसे अपने कहते हैं ना ओह थैंक गॉड, इस तरह का फ्यू कह रहा है, फ्यू कहा जाता है उसे। सब जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें लगा चलो ठीक है भैया स्टोरी बच गई है, डॉक्टर साहब सबको अच्छा लगा सुन के। और फिर किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी जो बीवी है आज, क्या वो मोटी है जैसे आप तब सोचते थे? नो सेड द डॉक्टर, गॉड विल्ड अदरवाइज। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान को कुछ और ही मेरे बारे में, मतलब भगवान ने कुछ और सोच रखा था हमारे बारे में, और जो हमारी बीवी हैं वो बहुत ही दुबली पतली सी हैं और मतलब वो स्प्रिंटर की तरह भागती हैं, वो गिफ्ट है स्प्रिंटर्स का, स्प्रिंटर मतलब जो रनिंग करते हैं लोग। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। किसी और ने पूछा कि डॉक्टर साहब जब आप भागे थे तो क्या सांप आपके पीछे भागा था? द डॉक्टर रिप्लाइड, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately, I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning, at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left something behind, one thing as a final insult. डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं नहीं मैं भागा, और जब मैं भागा तो सीधे अपने दोस्त के घर पे आके रुका, वहां पे जाके तुरंत मैंने तेल लगाया पूरे शरीर पे और नहाया और अच्छे ताजे नए फ्रेश कपड़े पहने। अगले दिन 8:30 बजे मैं अपने दोस्त को लेके और एक आध दो लोगों को और लेके अपने रूम में गया कि भैया यहां से सारे कपड़े उठाए, अपने सामान उठाए, निकले यहां से, तो बड़ा खतरनाक रूम है। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां कुछ मिला ही नहीं, उन्हें किसी चोर ने रात में सारी चीजें चोरी कर ली थी, पूरा साफ कर दिया रूम, लेकिन उसने भी चोर ने भी इनकी एक इंसल्ट कर दी, एक चीज छोड़ के चला गया वो। तो किसी ने पूछा व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड, इन्होंने ही पूछा जो लिख रहे हैं, व्हाट वाज दैट, ये भी स्टूडेंट रहे, आई आस्क्ड। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी जो बनियान थी गंदी वाली उसे छोड़ गया हो, मतलब जो चोर था उसको कह रहे हैं कि उसको भी इतना ज्यादा वो था, मतलब साफ सफाई वाला चोर था, वो ले जा सकता था उस चीज को और धो के एक आध बार अच्छे से सोप से पानी से धो के साबुन से उसको पहना जा सकता था, लेकिन उसने वो छोड़ गया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, किसी ने पूछा कि भाई आपने फिर से देखा वो सांप अगले दिन? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन with its own beauty. डॉक्टर हंसे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा सांप, और वो सांप ऐसा था जिसने अपनी अपनी खूबसूरती से ही मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, अपनी खूबसूरती देख के ही परेशान हो जाता था, अट्रैक्ट हो जाता था अपनी खूबसूरती से। तो एक तरह से ये हिंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि देखो कैसे हम जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, जैसे वो सांप अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के अब मिरर में देखने लग गया, उसी तरह से मैं कर रहा था 5 मिनट पहले जब सांप नहीं आया था। तो इस स्टोरी से हमें ये देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब ने कैसे रियलाइज किया कि कभी कभी हम जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, जानवर भी ऐसा बिहेवियर कर रहे थे जिसका दिमाग बिना दिमाग का, सो माइंडलेस बिहेवियर इसे कह सकते हैं ना, कि आप सब देख के भैया अपने ख्यालों में पुलाव पका रहे हैं, अपने ख्याली पुलाव, और अपना इंपॉर्टेंट काम जो है उनको छोड़ चुके हैं। तो ये ऑथर का नाम वाईकॉम मोहम्मद बशीर है और ये मलयालम की स्टोरी है जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है वी अब्दुल्ला साहब ने। तो अब आपके सामने जितने भी एक्सरसाइजेस हैं इसको बहुत अच्छे मन लगा के करिए, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दीजिए, और इसमें स्पीकिंग एक्सरसाइज है, डिक्टेशन बहुत जरूरी है, किसी को बोलिए कि आपको डिक्टेट करे आप लिखें, और एक राइटिंग एक्सरसाइज है, राइटिंग एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत अच्छी है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में क्या है कि द टेक्स्ट यू रेड इज अ ट्रांसलेशन ऑफ अ स्टोरी बाय अ वेल नोन मलयालम राइटर वाईकॉम मोहम्मद बशीर। इन ट्रांसलेटिंग अ स्टोरी फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर अ ट्रांसलेटर मस्ट कीप द कंटेंट इंटैक्ट, हाउएवर द लैंग्वेज एंड द स्टाइल डिफर इन डिफरेंट ट्रांसलेशंस ऑफ द सेम टेक्स्ट। Here are two translations of the opening paragraph of a novel by a Japanese writer, Haruki Murakami. Read them and answer the questions below. तो basically इसका इस exercise का मतलब ये है आपको बताने के लिए कि जब आप किसी एक language से दूसरे language में translate करते हैं तो अलग अलग तरीके की differences आ जाते हैं उसमें, जो ट्रांसलेशन होता है उसमें, तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि लैंग्वेजेस डिफर करती हैं, एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से थोड़ा सा अंतर होता है और ट्रांसलेशन में भी अंतर आ जाता है। तो एक्सरसाइज का मतलब यही था कि आपको ये समझा सकें कि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होते हैं मीनिंग में, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे दो पैराग्राफ दिए हुए हैं, इनको आप पढ़िए और आंसर्स लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसलेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और फिर लास्ट में एक पोएम है, पोएम आप पढ़ें, साथ में डिक्शनरी रखें या गूगल खोले रहें, मीनिंग्स पहले आप लिख लें सारी वर्ड्स के, और जब मीनिंग्स लिख लें उसके बाद इसे आप राइम में पढ़ें। तो आप इसे पढ़ें, मैं एक लास्ट में एक सेशन रखूंगा जिसमें सारी पोएम्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे, डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, मीनिंग्स आपको अपनी खुद ढूंढनी पड़ेंगी, यही इसका पर्पस होता है कि आप सारे वर्ड की मीनिंग्स आपको पता हो। कैसे उसे पढ़ना है, कैसे राइम में पढ़ना है, इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट सेशन करूंगा जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे इस किताब के, तो एक चैप्टर पोएट्री पे करेंगे जिसमें हम केवल दिखाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है। तब तक आप खूब मेहनत करिए, अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस के बिना ये ठीक नहीं होगी, रोज प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए इंग्लिश प्रोग्राम्स आप देखें सुने लोगों को बोलते हुए, और अपनी किताब जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार में कई बार क्लैरिटी नहीं आती, दो तीन बार चार बार आप पढ़ लेंगे तो वही चीज़ समझ में आ जाता है। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। नमस्ते।